देखते हैं कि हम ने क्या सीखा था पिछली दफा। हमने बात की थी बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कि हमने हया नहीं करनी जब कोई हक बात कहनी हो, और हमारे सामने कोई ऐसी बात हो रही हो जिसके अंदर हमें समझ आ रहा है कि ये सही नहीं है, तो उसमें उस वक्त ये नहीं कहना मुझे शर्म बहुत आती है बोलते हुए, नहीं, उस वक्त वो बात को कहना है। यो दिल्लु भी ही कथीरा व यहदी भी ही कथीरा, अभी हमने समझा कि इसी कुरान से लोग भटक जाते हैं, इसी कुरान से लोग हिदायत भी लेते हैं, और वाकई इसी कुरान को इस नियत से अगर पढ़ेंगे कि इसमें से कोई हमने शोशे ही निकालने हैं तो फिर वैसी ही चीज निकले कि उनको मिलेगी। तो यो दिल भी इससे लोग होते हैं, हमें हिदायत का तो पता था, हमें गुमराही का नहीं पता था। आप देखें, बाज दफा पढ़ के सारा कुरान, समझ के सारा कुरान, फिर उसके बाद दिमाग इतना यानी आसमान पे चढ़ जाना कि उसके बाद इंसान किसी से बात करना पसंद ना करे, या फिर इंसान ऐसा हो जाए कि कोई बात किसी की सुनना ना चाहे। तो इसी कुरान से बजाय इसके कि वो हिदायत पाते, दिल नरम होते, उल्टा ही क्या हो जाता है, इंसान किस रास्ते पर चल पड़ता है कि उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है और उल्टा बजाय हिदायत पाने के गुमराह हो जाता है। फिर हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बहुत से सवाल भी ईमेल में आए हैं मेरे पास, वा यकताऊन मा अमर अल्लाह बिही अन युसला, वो काटते हैं जो हुक्म दिया अल्लाह ने एक जोड़ा जाए, मिलाया जाए। और मैंने आपको बताया था रिश्तेदारी को मिलाने का, इतना नहीं मुझे पता था, अंदाजा था कि इतने ज्यादा मसाइल हैं कि ये लोगों के लिए कितना मुश्किल है कि रिश्तेदारी हम कैसे मिला लें। ये तो जैसे बहुत बड़ी एक डिमांड उनसे कर दी गई है। हालांकि यहाँ पे देखें, ये मेरी बात नहीं है, या जरा गौर से पढ़ें किसकी बात है, ये किसका हुक्म है। मा अमर अल्लाह, जो हुक्म दिया इसका अल्लाह ने, अल्लाह का हुक्म है ये, तो ये तो किसी की डिमांड नहीं है आपसे, तो सीधा सीधा अल्लाह ताला का हुक्म है। जो इसको काटेगा फिर वो अल्लाह के हुक्म को काट रहा है ना, अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है। दूसरा, हमें थोड़ा सा सिला रहमी के बारे में समझना भी चाहिए कि वो है क्या। सिला रहमी ये नहीं कि ऑल द टाइम आप किसी के घर घुसे रहें या वो आपके घर घुसे रहें, या हर रोज आप उनको फोन कर रहे हैं या वो आपको फोन कर रहे हैं और 4 दिन ना बात हुई तो फिर बस मूड बन गए, ये नहीं है सिला रहमी। सिला रहमी ये कि इंसान दूसरे के साथ कट ऑफ ना करे, जब उसके लिए दुख सुख का मौका हो तो उसके साथ खड़ा हो, जब उसको जरूरत हो तो अपनी तौर पे पूरी कोशिश करे कि उसकी जरूरत पूरी हो जाए, दूसरे का ख्याल रखे, उसकी खैर खबर लिए रखे। जब काट ही देना तो पता ही नहीं है किसी की क्या खैर खबर है। बाज लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदारों में फलां वो बेवा हो गई, फलां वो, तो अच्छा उनसे अगर पूछा जाए कि भाई अच्छा फिर उनका कैसे गुजारा चलता, कहते पता नहीं चलता होगा किस तरह, बड़ा मुश्किल है वैसे, तो इसका मतलब आपने नहीं खैर खबर ली, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। हर एक खानदान में कोई ना कोई ऐसी फैमिलीज होती हैं, सबके खानदानों में, जो जरूरतमंद भी होती हैं, जो सबके सभी लोग तो ऐसे नहीं होते कि बहुत वेल टू डू हो, कहीं ना कहीं खानदानों में, एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ना कोई होता है जरूरतमंद, लेकिन हम उसकी खैर खबर रखेंगे तो हमें पता चलेगा उसकी जरूरत क्या है। तो बाज दफा ऐसे नहीं होता कि कोई नाराजगी है, लेकिन वैसे ही कभी बॉदर ही नहीं करते, हमें क्या लेना देना, हमें कोई जरूरत थोड़ी है। तो मैंने आपको बताया था कि ये ताल्लुकात जोड़ने जरूरत के लिए नहीं है कि अब जरूरत होगी किसी से, तो अगर आपने अपनी जरूरत के लिए किसी से ताल्लुकात जोड़े तो वो फिर क्या अल्लाह के हुक्म को मानना होगा, वो तो आपकी अपनी गर्ज है ना उसमें, या वो किसी से काम है, वो बड़े बड़े ओहदे पे हैं इस वक्त, आप उनके घर मिठाइयां लेके जा रहे हैं, वो जरा नाराज हो जाए तो आप उनकी खुशामदे करके उनको पैर पकड़ के भी मना रहे हैं क्योंकि आपकी गर्ज है, लेकिन जहां पे अपनी गर्ज नहीं है, सिर्फ अल्लाह का हुक्म है, वहां पे बड़ा मुश्किल है। तो कितने पापड़ बेलते हैं हम, जब हमें किसी से काम होता है तो फिर चाहे सर नीचे पैर ऊपर करने पड़े, कैसे करते हैं लोगों के आगे, कैसे मिनमिनाते हैं और किस तरह से उनकी बुरी बात को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब क्या अल्लाह का हुक्म आए तब नहीं हम बर्दाश्त करते। तो इसलिए इसको ये समझना है कि हमने उनकी खैर खैरियत रखनी है, हमने उनके साथ जोड़े रखना है, ताल्लुक काटने नहीं है कि अरसा अरसा गुजर जाए हमें पता ही नहीं है। वैसे नाराजगी तो कोई नहीं, लेकिन नाराजगी नहीं है तो फिर भी खैर खबर दूसरे की होनी चाहिए कि क्या उनके हालात हैं, कैसे उनका गुजारा हो रहा है। क्योंकि तो जाहिरी तौर पे देख के तो इतना मुश्किल है, लेकिन हमें क्या, हम अपनी जिंदगी में मगन। तो ये एक मामला है। दूसरे ये कि जहां पर ऐसी रिश्तेदारियां हों कि जहां पे बच्चों की शादियां भी की हुई है मसलन, और वहां पे शादियों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो रिश्तेदारियां भी कट जाती है। मसलन दो बहनों की बच्चों की आपस में शादी हुई, नहीं बनी आपस के अंदर, तो उनके भी ताल्लुक खत्म हो गए, अब हमेशा के लिए खत्म है। अब बस ना किसी ने दूसरे का मुंह देखना है, ना किसी से बात करनी है, ना कुछ है। जो होना था वो तो हो गया, वो तो जो जैसा तकदीर में ऐसा ही लिखा था। लेकिन एक और बड़ा गुनाह जो हो गया, कबीरा गुनाह हो गया, वो ये है कि ताल्लुक काट दिया, जो नहीं काटा जा सकता। और हम सिर्फ खुद नहीं काटते, फिर हम औरों को भी कहते हैं, खबरदार तुमने भी उससे बात की तो, अगर उससे बात करनी है तो फिर मेरे साथ तुम्हारा खत्म है। हम तो आगे से आगे करते हैं, इवन कुछ पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं, ये वो तुम्हारी फलां जो है वो मेरे से नहीं बोलती, वो तुम्हारी पुप्पी मेरे साथ ऐसे करती है, तुम्हारी क्या मिजाल है कि तुम उनके घर जाओ। तो ये नहीं कर सकते। इसी तरह बाज माएं बच्चों को बाप के खिलाफ कर देती हैं, बाज बाप माओं के खिलाफ कर देते हैं। तो इस तरह के भी वाकयात होते हैं, क्योंकि ये रिश्ते हैं और इनको निभाना और इनके जो हकूक हैं वो अल्लाह ने रखे हैं। अगर हमारा किसी ससुराल वाले के साथ नहीं बनता तो हम अपने बच्चों को नहीं रोक सकते, उनकी रिश्तेदारी है। तो ये है यकता मा अमर अल्लाह भी अन युसला, कि इसको सीरियस लेना है, ये मामूली बात नहीं है। वल्लदी खलक लकुम मा फिल अर्दी जमिया, वही है जिसने पैदा किया लकुम लिए तुम्हारे, मा फिल अर्दी जमिया, जो कुछ भी जमीन पे है। अब देखें वो कई फतक फुरून है ना, वो आगे भी समझने आ रहा है वही बात कि देखो तुम कैसे अल्लाह का कुफर कर सकते हो, कैसे उसको भूल सकते हो, कैसे उसका इनकार कर सकते हो। उसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदगी देगा, फिर उसकी तरफ लौटना है, और वही तो है वल्लदी। हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हुआ आने से क्या हुआ, जैसे हुमुल खासिरून आने से हुआ, वही तो है। अब ये हुआ निकाल के सिर्फ अल्लाह से भी बात शुरू करें तो ठीक है, लेकिन जब हुआ कह दिया ना, तो यानी वही तो अल्लाह है जिसने ये पैदा किया और तुम्हारे लिए पैदा किया जो कुछ है जमीन में। पैदा किया, एक तो पैदा किया और फिर तुम्हारे लिए पैदा किया, सिर्फ पैदा नहीं किया, तुम्हारे लिए किया। जैसे कोई बहुत बहुत जबरदस्त कोई तोहफे लेकर आई, ये सब आपके लिए है, ये आपके लिए है। अल्लाह ताला ने पूरी जमीन सजा दी, आसमान सजा दिया, फरमाया ये सब तुम्हारे लिए है। इवन आसमान के सितारों को कहा तुम्हारे लिए जीनत है। और शेर चीते तो नहीं सो आसमान की तरफ देख के कहते कितना खूबसूरत आसमान लग रहा है आज, ऐ वो तो नहीं ये बातें करते, तुम्हारे लिए, तुम्हारी एस्थेटिक सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो खलक लकुम, तो अब आप जब बाहर जाएं तो देखें कि क्या क्या है जमीन पे। आप सोचें लकुम, लकुम को सर्कल करें, आप सर्कल करें यहां पे लकुम को पेंसिल से, और ये सोचें तुम्हारे लिए, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए, यानी अभी इंसान दुनिया में आया भी नहीं था तब अल्लाह ने उसके लिए सब कुछ ये बना के रख लिया। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, सिर्फ जरूरतें नहीं, सिर्फ जरूरतें नहीं, जरूरतें तो वैसे भी पूरी हो सकती, आप पत्ते पहन लेते, जरूरत तो आपकी पूरी हो ही जानी थी, कपड़ों की क्या जरूरत है? और फिर वो भी रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे डिजाइन, रंग बिरंगा मटेरियल, तरह तरह की है ना। और खानों की हमने बात की थी, फलों की हमने बात की थी, खाना कैसा भी हम खा सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या अनवाओ अकसाम की चीजें पैदा की। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बहुत नाज उठाया तुम्हारा, बहुत कुछ तुम्हारे लिए बनाया। अल्लाह ताला को कैसी मोहब्बत होगी इस इंसान से कि लकुम, आप देखें तो सही, जमीआ का लफ्ज आया,
सिर्फ ये भी हो सकता था माफिल अर्थ, जो भी जमीन में, नहीं जमीन आज सारे का सारा, सब का सब किसके लिए, तुम्हारे लिए। कि लकुम में जो है ना, अच्छा लकुम की एक मतलब इसका है, इसको कहते हैं लामे इबाहा, मतलब है कि तुम्हारे यूज के लिए, तुम्हारे लिए इजाजत है इसको इस्तेमाल करने की। और एक है लामे तालील, ये दोनों लाम इस नाम के, ये नाम है लामे तालील, यानी जस्ट फॉर यू, जैसे हम कहते हैं ना सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने ये काम किया है, तो आपके ऊपर कितना बड़ा हो जाता है ना कि अच्छा इसने मेरे लिए किया, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं इतनी दूर से चल के आई, सिर्फ तुम्हारी खातिर ही मैंने ये बनाया, तो आप कितने एहसानमंद होते हैं, कितनी अच्छी है इसने मेरे लिए इतना एहतमाम किया। अल्लाह ताला कहता पूरी जमीन ही तुम्हारे लिए बिछा दी, देखो तो सही जरा, सब कुछ तुम्हारे लिए, यानी तुम इस्तेमाल भी करो। इसीलिए वो अब लोग कहते हैं ना, लो ये तो चीजें जहाज और ये तो पहले जमाने में नहीं थे, तो अब क्या इनको इस्तेमाल करना इस्लाम में जायज है, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सब कुछ तुम्हारे लिए है, अनलेस के अल्लाह ने किसी चीज को खाने को हराम किया हो। तो ऐसे अब हम सोचेंगे ये सब हमारे लिए कैसे है, हम तो इनको काम में भी नहीं लाते, हम तो लिमिटेड चीजों को काम में लाते हैं, लेकिन इसलिए कि हमारी नजर बहुत लिमिटेड है इसलिए हम ये सोचते हैं, हालांकि हर चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लिए काम कर रही है, इंसान को सर्व कर रही है, उससे कोई ना कोई इंसानों का ही पर्पस पूरा हो रहा है। हमारे लिमिटेड सोच की वजह से हम सोचते हैं जिस चीज से मेरे काम कारोबार को फायदा हो रहा है, मेरी सेहत को फायदा हो रहा है, मेरे जिस्म को फायदा हो रहा है, मेरे हुस्न में इजाफा हो या मुझे देख के अच्छी लगे, बस वही काम की चीजें, बाकी जो मुझे देख के नहीं अच्छी लगती, ये सांप इनका क्या काम है, इनको तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, अगर ये दुनिया में ना होते तो तुम ये समझ ना सकते कि जहन्नुम में जो सांप होंगे वो कैसे होंगे, अगर ये बिच्छू ना होते तो तुम ये ना समझ सकते, अगर गर्मी ना होती तो तुम ना ये समझ पाते, अगर खूबसूरती ना होती तो तुम जन्नत की खूबसूरती कैसे जान सकते। नहीं, खूबसूरत चीजें तो होनी चाहिए, ये बेकार चीजें नहीं होनी चाहिए, कई दफा उन्हीं चीजों के जहर से भी दवाइयां बनती हैं, दवाएं बनती हैं, हाँ, और उनके क्या क्या पर्पज है हमें तो ये भी नहीं पता, हम अपने जीने से ताल्लुक रखते हैं, हमें क्या कोई चीज क्या हो क्या नहीं कर रही है, हालांकि जब अल्लाह ताला ने फरमा दी हर चीज तुम्हारे लिए है ना, तुम्हें सर्व करने के लिए, तुम्हारे लिए बनाई है अल्लाह ने, तो सोचे फिर कि वो कोई एक खाना मेरे लिए बना देती है, वो कहीं दूर से चल के आ जाती है, आप उसका इतना रिगार्ड करते हैं कि मेरी खातिर इसने किया, और अल्लाह ताला कह रहा है मैं सारा कुछ ही तुम्हारे लिए बना दिया जमिया, तो दिल नहीं झुकता उसके आगे, फिर भी सब कुछ तुम्हारे लिए बना दे। अब इंडिविजुअली हमें सोचने की जरूरत है, मेरे लिए क्या क्या है, जब मैं दुनिया में नहीं आई थी मेरे लिए पहले से सूरज चमक रहा था, जमीन पहले से रखी हुई थी, दरख्त फूल फल पौधे सब चीज पहले से थी, ये चरिंद परिंद जानवर पहले से थे, अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन का इंतजाम पहले से किया हुआ था, ग्रेविटी पहले से थी, यहाँ पे पानी पहले से था, ये झरने पहले से चल रहे थे, कि जब मैं दुनिया में आऊं तो ये मेरे लिए सब कुछ तैयार, सब कुछ पहले से तमाम किया हुआ था, फिर इस जमीन का बैलेंस रखने के लिए पहाड़ पहले से गाड़े हुए थे, फिर स्पीशीज का बैलेंस रखने के लिए एक बनाया तो दूसरा उसके साथ बैलेंस करने के लिए बनाया, समंदर में मछलियां मेरे लिए चल रही थी, मुझे तो कई चीजों का पता भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया जमीया सब का सब, वो इंसान तो कितना नाशुक्र है फिर भी अपने रब को ना पहचाना, जमिया के अंदर ना दुनिया की सब चीजें आ गई हैं, सब चीजें, चाहे वो सोना चांदी तेल पानी आग हवा सब चीजें आ गई, जिस रब ने इतना कुछ किया तुम समझते ही नहीं उसको कुछ, उसने तो थोड़े से तुम्हें हुक्म दिए, तुम्हें तो वो एक एक बात का एक एक सांस लेने की भी बात का हुक्म दे देता तो तुम्हें तब भी झुकना चाहिए, थोड़े से अहकामात उसने दिए ये करो ये ना करना, वो भी ना पूरे हो सके, तो फिर क्या कैसा ये इंसान ना शुक्र है, फिर तो फेलियर ही है ना ये इंसान, अपने आप को अलग करके सोचे एक जात है जो आप वैसे दुनिया में ही देख रहे हैं, आप किसी के साथ बहुत अच्छा करें बहुत उसको आपने स्ट्रीट से उठाया, वो होमलेस था, आपने उसको ले जाकर नौकरी दिलाई, घर लिया, आपने उसको चाबी दी गाड़ी की, ये लो गाड़ी तुम्हारे लिए, घर फर्निश तुम्हारे लिए, ये नौकरी तुम्हारे लिए, आपने उसको ग्रोसरियां भर के दी उसके घर के अंदर, आपने उसके बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दिया, आपने उसको सिटीजनशिप लेके दी, आपने वो बेचारा कहाँ पड़ा हुआ था, आपने उसको क्या क्या आपको, उसके बाद वो आपको ही आंखें निकालना शुरू हो जाए, आपके खिलाफ बोलना शुरू हो जाए जाके लोगों में, तो आप क्या कहेंगे? खुद सोचेंगे तो छोटी छोटी चीजें, और तुम तो सोचो तुम्हें तो जिंदगी दे दी, तुम तो सोचो तुम्हारे लिए सारा कुछ ही रख दिया जमीन पे। देखें ये जो ये जितना कुछ हम खाते हैं, ये तो आप दूसरे चरिंद परिंद और जानवरों की गजा देखें, वो कितनी यानी एक मोनोटनस सी है, सिर्फ वो ही चीज खाते हैं और तो कुछ है नहीं, हमारे लिए कितना कुछ है, सब्जियों फलों गोश्त और हर चीज से लेके आप देखें, मछली और क्या क्या चीजें, जो वैरायटी हमारे लिए किसी और चीज के लिए नहीं, और अल्लाह ने किसी और को नहीं कहा कि मैंने शेरों के लिए ये दुनिया पैदा की, मैंने ये दुनिया पैदा किया इनके लिए, जो हाथी हैं इनके लिए पैदा किया, मैंने फलां के लिए पैदा किया, तुम्हारे लिए भी किया लेकिन जानवरों के लिए भी किया, नहीं ऐसा नहीं कहा, तुम्हारे लिए लकुम। अब क्या इसके बाद सर उठाने की गुंजाइश है? इतनी बातों को इंसान समझ जाए तो उसकी हिदायत के लिए काफी है, उनके दर भटकता फिरता। सुमस्तवा इलस्समा, फिर उसने तवज्जो की आसमान की तरफ, अगर आगे आगे इस्तवा के आगे आला आता ना तो फिर था बुलंद हुआ, लेकिन यहां पे आया इस्तवा इला तो मुतवज्जे हुआ, तो इसका मतलब है कि ये तो इंसान की पैदाइश से पहले की बातें हैं कि ये सारा कुछ तैयार किया जा रहा है उसके आने के लिए। बेबी आना होता है दुनिया में, कैसे माँ बाप चीजें खरीद के रखते हैं ना, ये उसका कमरा सजा दिया, ये किया, अल्लाह ताला ने इंसान के आने से पहले सारी कायनात ही सजा के रख दी, कि फिर अल्लाह मुतवज्जे हुआ आसमानों की तरफ, फसव्वाहुन्ना सब्अ समावात, फिर उनको सात आसमान हमवार कर दिया, देखो कैसे तुम्हारे ऊपर छत लगा दी आसमान की, उसके ऊपर तारे टांग दिया, और आपको पता है ये तो ये अभी पहला आसमान है, ये आसमान दुनिया है, क्योंकि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया हमने आसमान दुनिया को जीनत दी सितारों से, तो ये जितने सितारों की बातें हम पढ़ते हैं मिलियन लाइट ईयर्स दूर फलाने दूर, वो फलाने जगह पे एक सितारा इतनी दूर है, बेचारे अभी तक तो इंसान फाइंड आउट ही कर रहे हैं कि कितनी दूर दूर सितारे हैं, जाना तो दूर की बात, जा ही नहीं सकते जाहिर है, इंसान की तो जिंदगी इतनी नहीं है, इतने लाइट ईयर्स दूर कैसे वो ट्रेवल कर सकता है। ये तारे जो है ये आसमान दुनिया की जीनत है, तो सोचें सुभान अल्लाह, इसके ऊपर सात छह और आसमान है, ये पहला आसमान है अल्लाह ताला ने ये बना दिए, वो और फिर कैसे बनाए होंगे अल्लाह ने, फिर वो कैसे सातों आसमान होंगे, फिर अल्लाह ने कैसे ये किया, वह हुआ बिकुल शहीन अलीम, इसका जवाब ये, वो हर चीज को खूब इल्म रखने वाला, वो कहते हो कैसे ये कैसे हो गया वो कैसे होगा, वो सब जानता है, उसको इल्म है, सुभान अल्लाह, इसका जवाब है, तो वो चूंकि हर चीज का इल्म रखने वाला है वो कर सकता है ये सब। फिर अब कहानी शुरू होती है इंसान की, अभी रूहें भी नहीं बनी थी, अभी इंसान का कोई वजूद नहीं था, मैं और आप तो कुछ थे ही नहीं, रूहों की फॉर्म में भी नहीं थे, तो आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं थे, बहुत पुरानी बात अल्लाह ताला बता रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया इज ना, जब पुरानी बात करनी होती कि ओ, पहले ये हुआ था, जब ऐसा हुआ था, वह इज कॉल रब्बू का, और जब कहा तेरे रब ने, ये अब देखें बहुत एंशंट टाइम की बात है, जब कहा तेरे रब ने लिल मलाइकती फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं बनाने वाला हूं जमीन में खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने एक बात रखी कि मेरे फरिश्तों मैं जमीन के अंदर एक अपना खलीफा बनाने वाला हूं। खलीफा का मतलब क्या होता है? जो पीछे रह जाए, पीछे आने वाला जानशीन, सक्सेसर, सब्स्टिट्यूट को भी कहते हैं, नायब को भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे इंसान किसका खलीफा है? बाज मुफसरीन ने कहा कि चूंकि दुनिया में पहले इंसान सॉरी जिन्नात रहते थे, तो जिन्नात के बाद अब इंसान आए हैं, तो वो खलीफा कहा गया। बाज कहते हैं कि नहीं, असल में खलीफा का ये माना होता है जब कोई बड़ा पोजीशन ऑफ पावर वाला किसी को कोई जिम्मेदारी दे और उसको कहे कि मेरा ये काम करो, तो उसको ये जिसको हुक्म दिया गया उसको खलीफा कहते हैं, ठीक है, नायब कह सकते हैं। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह थे, कि यानी जमीन में अल्लाह के अहकामात को पूरा करने के लिए आए, इंप्लीमेंट करने के लिए अल्लाह के कवानीन को, और पूरी जिन से इंसानी जो है अल्लाह ताला उसको क्यों बना रहा है, मैं बना रहा हूं जमीन में खलीफा, ये इंसान का पहला ये नहीं बताया कि मैं इंसान बना रहा हूं जमीन में, खलीफा बना रहा हूं, यानी वो जमीन में मेरे अहकाम को नाफिज करेगा। इसका मतलब है कि मेरा और आपका दुनिया में मकसद क्या था, आने हमें बनाने का मकसद क्या था, ये फन करना नहीं था, इंजॉयमेंट नहीं था कि दुनिया में आए हुए इंजॉय करें, जिंदगी एक दफा मिली है इंजॉय नहीं करना, हमें फन नहीं करेंगे, एंटरटेनमेंट बस, जरा असर फारिग हुए एंटरटेनमेंट शुरू हो गए, बस जिंदगी का मकसद एंटरटेनमेंट है, पहले मेहनत करो, काम करो, खूब अपना दिमाग खर्च करो, उसके बाद फिर एंटरटेनमेंट, बस यही जिंदगी है, फिर उठो फिर काम करो फिर एंटरटेनमेंट, फिर उठो फिर काम करो फिर एंटरटेनमेंट, यही चलता रहता, जिंदगी गुजर जाती, इसके लिए नहीं पैदा किया, इसके लिए कि अल्लाह ताला के अहकाम को नाफिज करो दुनिया के अंदर। तो अच्छा, अब जब फरिश्तों ने ये सुना, उन्होंने आगे से कहा, कालू उन्होंने कहा, अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, एला क्या तू बनाएगा इसमें, किसमें, जमीन में, उसको मन जो युफसिदु फीहा, जो फसाद करेगा इसमें, वो यस्फिकु दिमा और खून बहाएगा, यानी कत्लो गारत करेगा, फसाद करेगा। अच्छा पहले मैं आपको बताऊं कि फसाद का मतलब क्या है, यानी अल्लाह की नाफरमानी, शिर्क, अल्लाह के अहकाम को तोड़ना, गुनाह, अभी बताया ना आपको, और यस्फिकु दिमा क्या है, खून खराबा, कत्लो गारत गिरी, तो ये उन्होंने कहा। उनको कैसे पता चल गया, वो भी तो इंसान बना ही नहीं है, सोचा करें आप भी ना, सोचें, गौर और फिक्र की आदत डालें कि कैसे उनको पता चला, उनको कहां से, कोई उनको गैब का तो नहीं पता है। ये उनको यहां से पता चला, नंबर वन इसका रीजन, नंबर वन लिखें इसमें कि दुनिया में मैंने आपको बताया 2000 साल पहले से जिन्नात बसते थे, और जिन्नात ने यहाँ पे खूब फिस्को फुजूर किया, कत्लो गारत की, ये सब किया था, तो उन्होंने उनका देखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये भी यही काम करेगा, ठीक है। नंबर टू लिखे, नंबर टू रीजन कि उनको कैसे पता चला, उनको ऐसे पता चला कि जब ये कहा गया है कि एक खलीफा, तो खलीफा से उन्होंने ये बात को अखज किया कि खलीफा तो वो है जो जमीन में इसलाह करेगा, अल्लाह के अहकाम को नाफिज करेगा, यहाँ पे यानी ऐसे काम करेगा जिनसे फसाद को खत्म करेगा, रिजॉल्व करेगा इश्यूज को, तो इसके अंदर तो फिर जाहिर है एक इख्तियार चाहिए होगा, पावर चाहिए होगी, जब इख्तियार आएगा उसके पास, जब उसके पास पावर आएगी, तो वो तो फिर इख्तियार को गलत भी इस्तेमाल करेगा, पावर को गलत भी इस्तेमाल करेगा, अरे वो हमारी तरह तो नहीं होगा कि भाई जो जो अल्लाह ने कहा वो करता गया, वो तो खलीफा है, वो तो जो, जो उसके पास पावर होगी तभी तो वो रिजॉल्व करेगा ना इश्यूज को, तभी तो वो नाफिज करेगा, तो खलीफा वही होता है वाइस ज्यूरेंट, तो इसलाह करेगा दुनिया के अंदर। अब उन्होंने इससे अखज किया कि ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, यहाँ पे फसाद होगा, ये खून खराबा होगा। अब उनकी ये देखिए, उन्होंने भी एक सवाल किया, पीछे किसने सवाल किया था, आज की आयतों में पीछे किसने सवाल किया था, अभी वो लोग जिन्होंने कुफर किया, ये जो हमने आज ये बागुदा वाली पढ़ी है, इसके अंदर आयत नंबर 26 में आप देखें, अल्लदीन कफरू यकुलून मादा अराद अल्लाह बिहादा मतलब, अच्छा उनसे अल्लाह नाराज है, लेकिन यहां पे फरिश्तों से अल्लाह नहीं नाराज हुआ कि तुम सवाल ये कैसा कर रहे हो, और तुम क्या, इसलिए कि फरिश्ते जो हैं वो सवाल ऐसे नहीं कर रहे, अल्लाह क्यों तू कर रहा है ऐसे,
जैसे अल्लाह ताला हम सबको माफ कर दे, या अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, जैसे आज हमारे मुसलमानों में अल्लाह ने ये क्यों कह दिया, अल्लाह ने ये क्यों ऐसा किया, अल्लाह ने मेरे साथ क्यों ऐसा, एतराज की फॉर्म में बात करते हैं, वो सवाल नहीं होता, मेरे साथ क्यों अल्लाह ने ऐसा किया, मैं ही रह गया था। ये एतराज है, फरिश्तों ने एतराज नहीं किया, उन्होंने हिकमत जानने के लिए सवाल किया था। तो जब हिकमत जानने के लिए, यानी इंसान कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझा देंगे ये क्या है, ये क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, वो ठीक है, लेकिन जब ये कहेंगे ये क्या अल्लाह ने क्या दिया, तो ये गलत है। तो सवाल सवाल में भी फर्क होता है, कोई सवाल तनकीद करने के लिए, तो क्रिटिसाइज करने के लिए कि अल्लाह को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई सवाल है समझने के लिए। अब समझ आइए आपको कौन सा सवाल होता है जो सही होता है और कौन सा सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सवाल नहीं होता, वो इतराज होता है। तो सवाल के भी एटिकेट्स हैं। अब आप देखें कि जब उन्होंने ये कहा तो उनको एक तो ये बात समझनी थी, दूसरा उनको क्या फिकर थी, उनको ये फिकर थी कि अल्लाह की नाफरमानी होगी जमीन में। आपको पता है ये फरिश्ते अल्लाह की बहुत ताजीम करने वाले हैं, बहुत ज्यादा, ये तो कभी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो अल्लाह से कोई सवाल करें, अल्लाह तू क्यों पैदा कर रहा है, वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते अल्लाह से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ला युसअलु अम्मा यफालु, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, वो जो चाहे करे, वह हुम युसअलून, वो सवाल किए जाते हैं, लोगों से सवाल किए जाएंगे, बाकी सारी मखलूक से अल्लाह जिससे चाहे पूछे कोई बात, क्यों तुमने ऐसा किया, अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता, अल्लाह तूने क्यों ऐसा किया। ये तो आज इख्तियार दिया हुआ है, तो जुबानें खुली नहीं है, जो मर्जी कोई बोलता जाता है, जो मर्जी कोई कहता जाता है, जिस दिन अल्लाह ने जुबानों को बांध दिया ना, इनको बंद कर दिया, फिर इंसान वो जो वहां देखेगा उससे उसको समझ आ जाएगी। फिर ये तो आज अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ तो ये सब बोल रहा, वरना उससे कोई नहीं पूछ सकता, किसी की मिजाल नहीं है उससे पूछने की, और ना ही किसी का हक है कि उससे पूछे कुछ, क्यों किया तूने, और भाई तुम्हारी जिंदगी अल्लाह ने दी है, वो जो मर्जी करे, अब मेरा घर हो, मैं अपने घर में जो मर्जी करूं, अब आप आगे कहें ये तुमने क्यों ऐसे किया हुआ, तो मैं कहूंगी आपका घर नहीं है, मेरा घर है, मैं अपने घर में जो मर्जी करूं, तो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने जिंदगी दी, वो जो मर्जी करे, फआलुल लिमा युरीद, सूरह बुरूज में आता है ना, अल्लाह जो चाहे करे, ठीक है, ये जिंदगी उसकी है, तो वो हमें हमारे साथ जो भी करे, हमें क्या इख्तियार है, अपनी बेबसी देख ली ना, ना मौत हाथ में, ना जिंदगी हाथ में, ना कोई अंजाम हाथ में, तो क्या है हम। तो फरिश्ते जो पूछ रहे हैं तो वो ना इतराज कर रहे हैं, ना अल्लाह से क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे कि अल्लाह तुमने, वो कह रहे हैं अल्लाह हमें समझ नहीं आई कि इसमें हिकमत क्या है, और अगर तूने इबादत के लिए पैदा किया है, करना चाहता है, तो वह नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, तो हम तो ऑलरेडी तेरी तस्बीह कर रहे हैं और तेरी तकदीस बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। आपको पता है ना, फरिश्ते तो हर वक्त जितने फरिश्ते जो काम भी कर रहे हैं ना, चाहे वो हवा के ऊपर मामूर है, चाहे बादलों पे मामूर है, चाहे रिस्क पे मामूर, वो सारा टाइम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं, हाँ सारा टाइम, और उससे थकते नहीं है। तो वो कहते हैं हम तो तस्बीह अल्लाह तेरी ऑलरेडी बयान कर रहे हैं, और तकदीस भी तेरी पाकी भी, पाकी किससे कि तू हर ऐब से, हर शिर्क से, हर फ्लॉ से, हर वीकनेस से तू पाक है। तो ये जो तकदीस है वो नफी है, हर जो अल्लाह की शान के खिलाफ कोई भी सिफत है उसकी नफी है, और तस्बीह क्या है, उसमें अल्लाह की पाकी है, उसमें यानी असबात है, ठीक है, इतराफ है कि अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू बुलंद है, अल्लाह तू एक है, अकेला है, तू रजाक है, तू रहमान है, तू रहीम, तो ये तस्बीह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सुजूद में जो एक आपकी तस्बीह थी, शायद लोगों को इतना नहीं पता हो कि सुभान रब्बी अल आला या सुभान रब्बी अल आजीम की जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तस्बीह किया करते थे, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, सुब्बू हर कुद्दूस अल्लाह है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, ठीक है।
तो वो कहते हैं हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं अल्लाह, फिर मतलब इबादत के लिए भी इसकी जरूरत नहीं है। और ये वैसे भी जब इसके पास इख्तियार होगा, तो जब किसी को इख्तियार मिल जाता है तो वो जरूर अपने इख्तियार का उल्टा इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मेरे फरिश्तों मुझे पता है जो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता मुझे पता है। अब फरिश्ते वो आर्ग्यूमेंट नहीं शुरू हो गया, अल्लाह तुझे कैसे पता है, हमें जो पता है हम जो जानते हैं, अब वो एक शुरू कर दें अल्लाह ताला के साथ एक, नहीं। उसके बाद आप आगे देखेंगे, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि क्या उसके अंदर बातें थी जो उन्होंने फिर एतराफ किया। और यहां पे भी अल्लाह ताला को उनसे मशवरा लेने के लिए नहीं उनको बता रहा, उनको इन्फॉर्म कर रहा है अल्लाह ताला कि मैं एक बनाने वाला, क्योंकि देखिए दुनिया में जो नज्मो नस्क चलेगा, मसलन जिंदगी मौत रिस्क, ये बादल पानी ये सब चीज जमीन के जो चलेंगे, ये निजाम अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले कर देते हैं, वो आगे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, को उनसे इजाजत नहीं ले रहे, ना मशवरा नहीं ले रहे, तुम बताओ मैं करूं कि नहीं करूं। नहीं, अल्लाह को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं और किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों के मैं जानता हूं, वो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। हमारी तो छोटी सी अकल है, अल्लाह को तो पता है बहुत सारी हिकमतें, लेकिन थोड़ी सी बातें आपके सामने रखूंगी कि क्या चीज है जो उनको नहीं पता थी, वो नहीं जानते थे, अल्लाह को पता है। आप देखिए एक हदीस में आता है ना कि जब दिन के फरिश्ते, दिन होता है सुबह सादिक के वक्त, दिन के फरिश्ते आते हैं और असर को चले जाते हैं, और रात के फरिश्ते आ जाते हैं वो फजर के वक्त चले जाते हैं, यानी शिफ्ट बदलती है, एक सुबह फजर के वक्त और एक असर के वक्त। आने वाले जब आते हैं तब भी और जब जाते हैं तब भी, सुबह की और असर की नमाज में लोगों को पाते हैं, यानी लोग फजर पढ़ रहे हैं या असर पढ़ रहे हैं, वो जाके अल्लाह ताला के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पर अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि जब तुम गए थे तो क्या कर रहे थे, वो अल्लाह के अल्लाह जानता है, और जब तुम आए तो किस हाल में छोड़ के आए। अल्लाह ताला इससे फरिश्तों को बताता है कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, इसी चीज को देखने के लिए तो अल्लाह भेजता है कि जाओ देखो। फिर अल्लाह ताला जब अराफात में लोग होते हैं और अल्लाह ताला उनको देख के फरिश्तों पे फखर फरमाते हैं कि देखो मेरे बंदों को, इनको ये फरिश्तों को तो नहीं पता था, फरिश्तों को तो नहीं ये पता कि इस इंसान जो है, जो अल्लाह इंसान बना रहा है, इसमें पैगंबर आएंगे, औलिया लाएंगे, सालेहीन आएंगे। हाँ, फरिश्तों को नहीं पता कि इसमें वो भी होंगे जो अल्लाह की खातिर जान की बाजी लगा देने वाले होंगे, फरिश्तों को नहीं पता कि वो होंगे जो बिन देखे ईमान लेकर आएंगे, सब कुछ अपना कुर्बान करने को तैयार होंगे। फरिश्तों को नहीं पता कि इनमें अल्लाह की मोहब्बत में दीवाने कहलाने वाले भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो रातों को उठ के अपने आंसुओं से मुसल्ले को भिगो दें, ऐसे भी होंगे जिनको गलियों में घसीटा जाएगा और उनकी जुबान पे क्या होगा, आहत आहत बस। ऐसे दीवाने भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो फजर से मगरिब तक मुंह में कुछ नहीं डालेंगे, ना पानी का कतरा ना खाना, भूखे रहेंगे कि अल्लाह तेरी खातिर रोजा रख के। ऐसे भी होंगे जो अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला दबा देंगे, मेरी ख्वाहिश है नहीं वो नहीं, अल्लाह इसमें राजी होता है तो उसकी रजा होगी। ऐसे भी होंगे जो टेम्पटेशन से भरी हुई दुनिया में रहेंगे, लेकिन उसमें रह के भी अल्लाह को नहीं भूलेंगे, उसकी याद को सीने से लगा के रखेंगे। ऐसे भी होंगे जो पाबंदियों में रह के, पाबंदियों में अपने आप को रखेंगे, इस पे रहने को तैयार हो जाएंगे, हालांकि वो चाहें तो कुछ भी कर लें, लेकिन वो खुद कि अल्लाह राजी हो जाए। ऐसे भी होंगे जो अल्लाह को खुश करने के लिए गम का घूंट सबर से पी जाएंगे। ऐसे भी होंगे जो गुस्से के मौके पे, इश्तियाल के मौके पे अपने आप को बस अपना गुस्सा पी जाएंगे, गुस्से के घूंट को अपने आप को काबू में रखेंगे। ऐसे भी होंगे जो मजबूर और बेकस होंगे, जो मुसीबतों में हाथ उठाएंगे और अल्लाह को पुकारेंगे। ऐसे भी होंगे जो अपने गमों के दुखड़े अल्लाह को सुनाया करेंगे। ऐसे भी होंगे जो अपनी मर्जी छोड़ के अल्लाह की मर्जी को आगे रखेंगे। ऐसे भी होंगे जो अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के ताबे करेंगे, ऐसे भी होंगे जिनकी सारी जिंदगी का मकसद ये होगा कि अल्लाह ताला सिर्फ एक दफा कह दे, या अय्या तो नफ्सुल मुतमाइना इरजी इला रब्बी की राधिया तम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। वो जिएंगे इसलिए कि एक दफा ये सुन ले। ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो सूली पे चढ़ेंगे तो बोलेंगे रब्बी बनी लिया इंदक बैतन फिल जन्नत, अल्लाह अपने पास जन्नत में मुझे घर दे देना। ऐसे भी होंगे जिंदा और उनका मुसला किया जाएगा, उनका एक एक उज्व काटा जाएगा और फिर भी उनकी जुबान से सिर्फ अल्लाह ही का नाम लिख लेगा। ऐसे भी होंगे फरिश्तों को क्या पता कि ऐसे भी दीवाने होंगे, ये सब फरिश्ते नहीं कर सकते। वो कहते ना हम अल्लाह तेरी तस्बीह करते तो हैं, हम तेरी तकदीस बयान करते तो हैं, लेकिन ये लोग ये इंसान वो होगा जो ख्वाहिशात और आरजू और टेम्पटेशंस की दुनिया में रहने वाला होगा, वो इस दुनिया में नहीं रहते। इंसान वो होगा जिसका नफ्स उसको बरगलाएगा, जिस पे जज्बात हावी होंगे, ख्वाहिशात हावी होंगी, उसको इख्तियार भी होगा जो चाहे करे, चाहे तो माने चाहे तो ना माने, चाहे तो अल्लाह का जिक्र करे चाहे तो नंगा फिरे, इंसान के पास इख्तियार होगा। वो नहीं जानते कि कैसे इंसान होगा जो अल्लाह को देखा भी नहीं होगा, गैब की दुनिया को ही नहीं जानता, कभी नहीं देखी, फिर भी अल्लाह के हुक्मों को ऐसे मानेगा जैसे सामने अल्लाह को देखता है। उसके साथ जरूरियात चिपटी भी होंगी और उसके पास जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए कई रास्ते होंगे, हराम के हलाल के, वो फिर भी हलाल रास्ते को इख्तियार करेगा। ये सब चीजें फरिश्तों को कहां पता है, उनके साथ तो ये लगी नहीं हुई, उनको ना भूख लगती है, उनको नहीं पता भूख किस चीज का नाम है, रोजा क्या चीज होती है, उनको नहीं पता, उनको नहीं पता औलाद की मोहब्बत क्या होती है कि इसके पीछे इंसान क्या क्या आराम कर सकता है, उनको नहीं पता ये ख्वाहिशात कैसी होती हैं जो अंदर उठती हैं और फिर इंसान पे गलबा पा लेती, उनको क्या पता गुस्सा क्या चीज है, उनको क्या पता किसी की जुदाई क्या होती है, उसका गम क्या होता है, उनको क्या पता दुख क्या चीज होती है, वो नहीं जानते। और उनको क्या पता कि इख्तियार मिल जाना कितना बड़ा इम्तिहान होता है, वो नहीं जानते। वो अगर इबादत करते हैं तो इसलिए कि उनको इसके अलावा कुछ नहीं पता, अगर फरमा बरदारी करते हैं तो इसलिए कि नाफरमानी उनको आती ही नहीं, जबकि इंसान ऐसा नहीं है, उसके पास सारा इख्तियार है, उसके पास ख्वाहिशात है। तो जब वो फिर इस तरह के हालात में रह के फिर भी अल्लाह की फरमा बरदारी करता है, तभी तो अल्लाह को इतना महबूब हो जाता है, तभी तो अल्लाह ताला उसको इनाम में जन्नत देंगे। तो तूने वहां पे प्रूव किया मुझे जहां पे ये सब कुछ था। फरिश्तों की मुखालफत करने के लिए कोई नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं खड़ा हुआ जो उनको बरगला रहा है, कोई उनका नफ्स नहीं है, ना उनके पास कोई शैतान है, ना उनके कोई उनके कोई मुखालिफीन है, ना उनको कोई माहौल ऐसा मिला हुआ है जिसके अंदर, जब इंसान इन सब चीजों के अंदर रहकर फिर भी अल्लाह के आगे झुकता है, वो अल्लाह को इतना प्यारा लगता है। इसीलिए जो इंसान तस्बीह करता है वो फरिश्तों की तस्बीह से ज्यादा है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है, चाहे तो जुबान को आप खामोश रखें, कोई नहीं आपको कहेगा आप तस्बीह क्यों नहीं कर रहे, आपको इख्तियार है अल्लाह की पाकी बयान करें या ना करें, अब वो इख्तियार है अल्लाह का हुक्म माने या ना माने। फरिश्तों के साथ तो ऐसा नहीं, वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है। और वाकई फिर अल्लाह ने दिखाता है ना फरिश्तों को, देखो मेरे बंदों को, देखो ये मेरे बंदे कैसे, सुभान अल्लाह, तो ऐसे बंदे बनना है कि अल्लाह फखर करे, जी अल्लाह कहे फरिश्तों देखो ये है मेरे वो बंदे कि मैंने तुम्हें कहा था ना इन्नी आलम मा ला तालमू, वो बंदे बन के दिखा। और अल्लाह में ऐसा बना दे कि हमारे अंदर ताकत नहीं है और हमारे साथ बहुत शैतान है,